ब नगरीय क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं, पृष्ठ संख्या 219। नारी शिक्षा का प्रारंभ भी पहले नगरों में हुआ था और आज भी यदि अनुपात की दृष्टि से विचार किया जाए तो नारी शिक्षा का प्रमाण नगरों में ही अधिक मिलेगा। अतः यह स्वाभाविक ही होगा कि पढ़ लिखकर नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या नगरों में ज़्यादा मिले। दूसरे, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन पद्धतियों और शैलियों में भी अंतर होता है। ग्रामीण जीवन आज भी अपेक्षाकृत अधिक सीधा साधा, सरल और कम खर्चीला होता है, तो दूसरी तरफ नगरीय जीवन अपेक्षाकृत अधिक महंगा होता है। फलतः नगरों में पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी नौकरी करनी पड़ती है। अध्याय के इस उपखंड में नगरीय क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न महिलाओं को उनकी नौकरी के रूप व प्रकार को ध्यान में रखते हुए उन्हें वर्गीकृत करने का उपक्रम किया गया है। पहला, उच्च पदाधिकारी महिलाएं। उच्च पदों पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में वास्तविक जगत में भी कम है, अतः उपन्यासों में भी ऐसे पात्र बहुत कम आए हैं। भारत सरकार या बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उच्च पदों पर पहुंचने के लिए IAS, IPS, MBA, CA जैसी उच्चतम स्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण करना पड़ता है। पृष्ठ संख्या 220 और अन्य क्षेत्रों की भांति इधर भी महिलाएं धीरे धीरे प्रगति कर रही हैं। आलोच्य उपन्यासों में ऐसे कुछ महिमा मंडित प्रतिभा संपन्न नारी पात्र उपलब्ध होते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा कृत टेराकोटा की मीति दिल्ली के वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में रहते हुए पहले मिस्टर खन्ना के दफ्तर में कार्य करती है, परंतु उसके साथ ही साथ वह IAS की तैयारी में भी लगी है। मीति असाधारण प्रतिभा संपन्न तथा साहसी लड़की है। वह मध्यवर्गीय परिवार से आई है, अतः अपनी परिवारगत आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण वह विवाह नहीं कर पाती, परंतु अपने परिवार को ऊपर उठाने में वह कोई कोर कसर नहीं रखती। विधवा बहन शोभा का पुनः विवाह कराती है, छोटी बहन उमा को डॉक्टर तथा छोटे भाई राम को इंजीनियर बनाती है। उमा की शादी उसके ही सहाध्यायी डॉक्टर नरेश से करवाती है। उमा को ट्रेडिशनल ब्राइड के रूप में देखने की उसकी ललक के पीछे उसकी दमित इच्छाएं ही कारणभूत है। मीति अविवाहित रहते हुए डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर और अंततः कमिश्नर की ऊंची कुर्सी तक पहुंच जाती है। मीति उच्च पदाधिकारी होने पर भी अपने विगत संबंधों को नहीं भूलती। मिस्टर खन्ना के ऑफिस में वह स्टेनोटाइपिस्ट की नौकरी करती थी। अतः जब मिस्टर खन्ना विक्षिप्त हो जाते हैं और मिसेस खन्ना आत्महत्या कर लेती है, तब मिस्टर खन्ना के दो बच्चों विकी और सिमी का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लेती है। पैराग्राफ चेंज। राजेंद्र यादव द्वारा प्रणीत उपन्यास अनदेखे अंजाल पुल की निन्नी भी पढ़ लिखकर भारत सरकार में एक उच्च पद को प्राप्त कर लेती है। निन्नी कुरूपता के कारण हीनता बोध से ग्रसित थी और यह हीनता ग्रंथि उसे कहीं का न रखती यदि वह उससे उबर न जाती। कुरूपता के कारण जब अपने आसपास के युवकों द्वारा वह तिरस्कृत होती है, तब उसके जीवन में दर्शन का प्रवेश होता है। दर्शन निन्नी के भाई का मित्र है और चित्रकार होने के साथ साथ एक सुंदर मानवीय मन का स्वामी भी है। दर्शन के सहज खुले व्यवहार से निन्नी ग्रंथि मुक्त हो जाती है। दर्शन उसे समझाता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अनुपात सुंदरता नहीं है। अनुपात के पीछे से उद्भासित होने वाला प्राण, प्रसन्न उत्साह और आस्था ही सुंदर है। मगर निन्नी, यह तुम्हारी नहीं, हम सबकी ट्रेजेडी है कि हम सुंदरता के उपादान को ही सुंदर समझते हैं। मानते हैं ढले ढलाए अवयव, नाक नक्श ही सुंदर है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ अनदेखे अंजाल पुल, पृष्ठ संख्या 145। दर्शन चलते चलते निन्नी के सूखे होठों को चूमता है। मानवीय संवेदना से प्रदीप्त यह चुंबन निन्नी के जीवन में नवीन भावोन्मेष और आत्मविश्वास को जगाता है और जिससे उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। पैराग्राफ चेंज। अकेला पलाश की तहमीना, टुकड़ों में बटा इंद्रधनुष की चरित्रा, दो लड़कियां की रंजना, पतझड़ की आवाजें की उषा आदि महिलाएं उच्च पदाधिकारी की श्रेणी तक पहुंचती हैं। दूसरा, डॉक्टर। डॉक्टरी की पढ़ाई कठिन, खर्चीली एवं प्रतिस्पर्धात्मक होती है। सभी राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में सीमित स्थान होते हैं। अतः स्पर्धात्मक परीक्षाओं में बहुत ऊंचे नंबर पाने वालों को ही मेडिकल कॉलेज में सीट मिल पाती है। पृष्ठ संख्या 221। परंतु इधर देखा गया है कि विज्ञान की पढ़ाई के क्षेत्र में भी लड़कियां बाजी मार रही हैं। हाल ही में गुजरात बोर्ड का विज्ञान प्रवाह का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें राजकोट की कड़वी बाई वीरानी कन्या विद्यालय की दिव्या शाह 92.61% अंकों को प्राप्त करके सर्वप्रथम आई। अहमदाबाद केंद्र में तो वैशाली वसावड़ा एवं विराज वसावड़ा नामक दो जुड़वा बहनें क्रमशः चौथे और आठवें क्रम से उत्तीर्ण हुई। समग्र परिणाम भी लड़कियों के पक्ष में गया। इन्वर्टेड कमापन, आउट ऑफ द टोटल 11,797 फीमेल कैंडिडेट, 7,037 पास्ड एंड फ्रॉम अ टोटल 31,289 मेल कैंडिडेट, 15,788 पास्ड। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ द टाइम्स ऑफ इंडिया 20/7/1997 पृष्ठ 1। अभिप्राय यह है कि सने सने लड़कियों के पढ़ने में रुचि बढ़ रही है और तेज तर्रार लड़कियां भी इस क्षेत्र में आ रही हैं। विज्ञान की उच्चतम परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए अब लड़कियों के लिए MBBS, MD, MS इत्यादि कर लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़े शहरों में 60-70% गायनेकोलॉजिस्ट महिला डॉक्टरों से ही होते हैं और उपन्यास में भी जीवन का यथार्थ किसी न किसी रूप में प्रतिबिंबित होता ही है। अतः आलोच्य उपन्यास में भी कुछ ऐसे नारी पात्र आए हैं जो डॉक्टर के रूप में कार्य करते हैं। ऐसी महिलाओं का मान सम्मान भी अन्य महिलाओं से अपेक्षाकृत अधिक होता है। शशि प्रभा शास्त्री कृत सीढ़िया की मनीषी तथा डॉक्टर लीना मीना दास कृत ढहती दीवारे की सुप्रिया, शिवानी कृत कृष्ण कली की डॉक्टर पेद्रिक उर्फ रोजी, कालिंदी की कालिंदी तथा शमशान चंपा की चंपा, लक्ष्मीकांत वर्मा की टेराकोटा की उमा आदि नारी पात्र महिला डॉक्टर के रूप में कार्यरत मिलते हैं। सीढ़िया की मनीषी विधवा है परंतु पढ़ लिख कर डॉक्टर हो जाती है। इसी उपन्यास की डॉक्टर लीना पहले तो विवाह के विरोध में काफी मुखर होती है, परंतु बाद में मौका मिलते ही वह डॉक्टर कश्यप से विवाह कर लेती है। मनीषी अपनी आदर्शवादिता में अविवाहित रह जाती है। ढहती दीवारे की सुप्रिया वैसे तो एक दरिद्र परिवार से आई है, परंतु ड्रग की तस्करी करने वाला वीरेंद्र कपूर उर्फ वीके अपने व्यवसायिक हितों के लिए उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाता है। कृष्णकली की रोजी एक मिशनरी डॉक्टर है जो अल्मोड़ा के कुष्ठ आश्रम में अपनी सेवाएँ प्रदान करती है। शमशान चंपा की चंपा तथा कालिंदी की कालिंदी मध्यवर्ग के परिवार की लड़कियां हैं और अत्यंत संघर्ष के बाद अपनी प्रतिभा के बल पर डॉक्टरी के पद पर पहुंच गई हैं। टेराकोटा की मीति पहले स्वयं IAS करके डिप्टी कलेक्टर हो जाती है और उसके बाद पदोन्नति करते करते कमिश्नर के पद पर पहुंच जाती है। अपना सामाजिक स्टेटस ऊंचा होने के बाद अपनी बहन उमा को वह डॉक्टर बनाती है। उक्त उपन्यासों में डॉक्टर के रूप में जो नारी पात्र आए हैं वे स्वाभिमानी एवं संघर्षशील हैं। समाज में भी उनको इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। अतः यह प्रमाणित होता है कि स्त्री यदि पढ़ लिख कर ऊँचे पदों को प्राप्त कर लेती है तो उसकी बहुत सी सामाजिक आर्थिक पारिवारिक यंत्रणाएँ समाप्त हो जाती है। पृष्ठ संख्या 222। तीसरा, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं। अब आधुनिक परिवेश में महिलाएं राजनीति में हिस्सेदारी करने लगी हैं। नगर पंचायतों, म्युनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशनों, विधानसभाओं तथा संसद सभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल ने अपने मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं को स्थान दिया, सुश्री जयंती नटराजन, सुश्री रत्नमाला सवानूर, सुश्री कमला सिन्हा, सुश्री रेणुका चौधरी। पहले गुजराल मंत्रिमंडल में केवल सुश्री कांति सिंह एकमात्र महिला मंत्री सदस्य थी। उक्त महिलाओं में जयंत नटराजन कलेक्टर सेक्रेटरी और कमिश्नर हैं, तो कमला सिन्हा प्रसिद्ध यूनियन लीडर रह चुकी हैं, परंतु हिंदी उपन्यासों में उसका जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए अद्यावधि नहीं हुआ है। पूर्व निर्दिष्ट पृष्ठों में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत नागार्जुन कृत इमरतिया उपन्यास की लक्ष्मी नगर स्टेट की महारानी तथा गोपाल उपाध्याय कृत एक टुकड़ा इतिहास की चनूली उर्फ चंदी देवी का उल्लेख हुआ है। उक्त दोनों नारी पात्र ग्रामीण क्षेत्रों से संबद्ध है, परंतु उनकी राजनीति का क्षेत्र नगर है, अतः यहाँ उनका उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं समझा जाएगा। चनूली उर्फ चंदी देवी दलित जाति की एक प्रताड़ित महिला है। वह एक ब्राह्मण युवक से विवाह करती है, अतः उसे गांव के लोगों से कई प्रकार की यंत्रणाएं सहन करनी पड़ती है, परंतु वह एक संघर्षशील महिला है। समस्याओं के सामने माथा नहीं टेकती, बल्कि उठकर उनका मुकाबला करती है और अपनी साहसिकता, प्रतिभा शक्ति, संगठन शक्ति तथा सेवा भाव के कारण वह राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करती है और MLA हो जाती है। जहां चंदी देवी दलित जाति का प्रतिनिधित्व करती है, वहां लक्ष्मी नगर स्टेट की महारानी इधर स्वतंत्रता के उपरांत राजघरानों के स्त्री पुरुष जो राजनीति में हिस्सा करने लगे हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। चंदी देवी कंटका कीर्ण पथ से राह बनाते हुए आगे की ओर अग्रसर होती है, जबकि महारानी जी को इस प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। जब तक जमनिया मठ के बाबा से उनके राजनीतिक हितों की रक्षा होती रही, तब तक लोगों की धार्मिक भावनाओं को भुनाते हुए वे जमनिया मठ के बाबा के जय जयकार के साथ अपना साथ देती हैं। परंतु जैसे ही जमनिया मठ के बाबा के नैतिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होता है, रानी उसे किनारा कर लेती है, जिससे उनकी राजनीतिक अवसरवादिता का परिचय मिलता है। कमलेश्वर कृत काली आंधी की मालती एक ऐसा राजनीतिक पात्र है जो एक प्रकार से इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व से मेल खाता है। नायिका एक बड़े बाप की बेटी है। उसके पिता उसे राजनीति की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, परंतु अपनी युवावस्था में वह एक युवक को दिल दे बैठती है। प्रेम परिणय में बदल जाता है। नायिका के पिता इस विवाह के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, फलतः वे अपनी बेटी के व्यक्तिगत जीवन में निरंतर दखलंदाजी करते रहते हैं, फलतः दोनों का दाम्पत्य जीवन खंडित हो जाता है। नायक अपने व्यवसाय में डूब जाता है, नायिका राजनीतिक सरगर्मियों में खो जाती है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने एक तेजस्वी कुशल राजनीतिज्ञ नारी का यथार्थ चित्रण किया है। स्वातंत्र्योत्तर काल में राजनीति के क्षेत्र में जो घटियापन आया है, उसका भी यथार्थ आकलन लेखक ने किया है। पृष्ठ संख्या 223, जहां काली आंधी की नायिका अपने पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि से लाभ उठाते हुए अपनी बुद्धि, प्रतिभा तथा तेजस्विता से राजनीति के शिखरों पर पहुंच जाती है, वहां प्रश्न और मरीचिका की रूपा आंटी राजनीति में आगे आने के लिए अपने यौनाकर्षण का प्रयोग करती हैं। राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए संपत्ति चाहिए और उसके लिए वह एक रामकुमार गबड़िया नामक व्यापारी युवक के साथ होटल में सोती है। रूपा आंटी का पति एक गांधीवादी सिद्धांतनिष्ठ राजपुरुष है। उपन्यास के अंत में यह दिखाया गया है कि जहां रूपा आंटी के पति राजनीति में बुरी तरह से असफल रहते हैं, वहां रूपा आंटी अपने राजनीतिक हटकंडों के कारण सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली जाती हैं।